परिचित सज्जनों, देवियों, हम भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। भक्ति का अर्थ है जब कंप्लीट सरेंडर कर दें व्यक्ति, कंप्लीट डिवोशन हो। ये तभी होता है जब जो प्रेम है वो चरम पर पहुंच जाए। इसीलिए भक्ति को कहा जाता है द पैथ ऑफ सुप्रीम लव। जब प्यार अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब पाने के लिए कुछ इच्छा ना हो, अपने आप को सेक्रीफाइस करने में ही खुशी होती हो, उसे ही हम भक्ति कहते हैं। अगली स्लाइड। और ये भक्ति के जो तीन जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे थे, एक होता है स्तुति। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या ईश्वर से करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो उसके तीन पिलर्स होते हैं जो भक्ति को टिकाए रखता है। एक होता है स्तुति या ग्लोरिफिकेशन या अप्रिशिएशन। जब हम ईश्वर के जो 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 एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके डीड्स हैं, जब उसके हम ग्लोरीफाई करते हैं, जब हम उसके अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो इस तरह प्यार बढ़ता है। रियल लाइफ में भी जब आप किसी के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों की तारीफ करते हैं, तो उसके प्रति क्या रिएक्शन होगा उसमें वो अलग बात है, पर जो तारीफ करता है दिल से उसके अंदर भी प्यार बढ़ता है। और हमने चर्चाएं की स्तुति करने से ये जो ग्लोरिफिकेशन है उसे क्या क्या फायदाएं होती हैं। पहला तो आपके अंदर खुद ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। नंबर दो, जिसकी आप तारीफें करते हैं, जिसे आप प्यार करने लगते हैं, उसके जो गुण स्वभाव है, जो भी उसके भी गुण कर्म स्वभाव है, उसको अडॉप्ट करने के लिए हमारा एटीट्यूड, हमारा टेंड उसी हिसाब से बनता है। अगर आप किसी के फैन हैं, फॉलोअर हैं, या प्रशंसक हैं, या भक्त हैं, हमारे अनजाने में, हमारे सबकॉन्शस में ये बना रहता है कि काश मैं भी वैसा ही बनूं, और पूरा नहीं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं उसी तरह बनने के लिए। इसी तरह जब हम ईश्वर के प्रति स्तुति करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो अंदर धीरे धीरे ये भाव भी होता है कि काश मेरे अंदर भी थोड़ा वो गुण आए, और उसी तरह हम अपने आप को उसी तरह ढालने के लिए लगते हैं। तीसरा फायदा है कि जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो हमारे अंदर पैदा होता है, कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, जो हमारे मन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, ज़्यादा ये सरल बनाता है, ज़्यादा निर्मल बनाता है, ज़्यादा प्योर बनाता है। जो भक्ति का दूसरा स्तंभ है, अगली स्लाइड में, जो प्रार्थना, जिसकी शुरुआत हमने पिछली बार की थी। प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना। हम अपने अपने रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें मांगते हैं। हम अपने घर में माँ बाप से मांगते हैं, अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने भाई बहन हैं, हम बाहर जाते हैं, हम मांगते हैं कि कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, सबके अपने मांगने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर मांगना पड़ता है। पर वो प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना जब आपके मांगने के पीछे आपका तड़प छुपा हुआ हो, आपकी इंटेंसिटी छुपी हुई हो आपके माइंड में कि आपको सचमुच चाहिए, जब आप तड़प जाते हैं तब वो प्रार्थना में कन्वर्ट हो जाता है। और जब प्रार्थना होने लगती है तो जो सबसे पहला इंसिडेंट आपके साथ घटता है कि आपका ईगो बा एरोगेंसी जो है वो घटने लगता है, क्योंकि आप किसी को अकड़ के साथ मांग नहीं सकते। मांगने के लिए झुकना जरूरी है, मांगने के लिए अपने ईगो पर कंट्रोल करना जरूरी है, तभी जा करके आप मांगने लायक बन सकते। अगली स्लाइड चलाएंगे। इसीलिए भारत में जो 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 सोसाइटी का जो सिस्टम बनाया गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, जो बचपन में जो बच्चा पढ़ने जाता है, उसमें बहुत सारे सीखने के साथ साथ ये एक सीख होती थी कि उनको रोज भिक्षा मांगने जाना होता था। और लास्ट स्टेज में भी जब वो सन्यासी बन जाए तो भी उनको भिक्षा मांगना, भिक्षा में जीवन यापित करना जरूरी है। इसीलिए नहीं कि लोगों को भिखारी बनाने की ट्रेनिंग देनी थी, इसीलिए कि वो राजा का भी बच्चा हो, जमींदार का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सबको अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में भिक्षा मांगने जाना होता था और रूल्स होता था कि एक घर में आप 3 दिन से 3 बार से ज्यादा भिक्षा मांगने जा नहीं सकते, एक गांव में आप 3 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते। मतलब हमेशा नए लोगों से नए जगह पर नए लोगों के घर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और वो भिक्षा क्या होती थी, खुद के लिए नहीं, उनको वो गुरुकुल में जमा करते थे जो गुरुकुल या स्कूल के यूज होता था। इसके पीछे उद्देश्य क्या था, यही था कि आप जब जब मांगने लगेंगे तो आपके एरोगेंस जो ईगो है वो अपने आप कम होगा। और इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ा दुखों का जो मूल कारण है, जो हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनके पीछे जो जो बहुत सारे दुखों का मूल कारण है कि हमारा अपना ईगो। और ये जो ईगो है हमें दुखी बनाता है जब हमारा पड़ोसी धनी बनता है, ये ईगो ही हमें दुखी बनाता है जब हमारे दोस्त हमसे आगे बढ़ जाते हैं, ये ईगो ही हमें दुखी बनाता है जब हमारे भाई बहन व दूसरे लंबी गाड़ी लेते हैं और हम नहीं ले पाते हैं। तो जिंदगी के ज्यादातर दुखों का जो कारण है वो हमारा अपना ईगो है। और इस पर अगर हम कंट्रोल कर सकें, अगर उसको हम अपने आप को हम्बल बना सकें, वो ह्यूमिलिटी हम सीख सकें अंदर से, तो हमारा लाइफ भी बड़ा सुकून भरा होता है और वो समाज भी बड़ा अच्छा होता है। तो प्रार्थना का पहला फल है कि व्यक्ति के अंदर अभिमान का नाश होता है। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि प्रार्थना से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर कोई नाराज नहीं है, दुखी नहीं है, कोई ऐसा उसको डिप्रेशन में नहीं है कि हम तारीफ कर देंगे खुश हो जाएगा, उसमें थोड़ा जान आ जाएगा फिर हमारे ऊपर आशीर्वाद करने लग जाएगा। तो कहते हैं जो भी आप भक्ति करते हो, स्तुति प्रार्थना उपासना कोई भी उपाय करते हो, वो आपके खुद के फायदे के लिए, आपको वो जो भक्ति अपने आप को रिजल्ट देती है। तो प्रार्थना का पहला फल होता है कि जब आप सचमुच प्रार्थना करने लगते हैं तो आपका अभिमान नष्ट होता है, आपका जो अहंकार है वो चूर चूर होने लगता है। अगर हमारे 10 साल के 50 साल के 20 साल के प्रार्थनाओं के बावजूद, ईश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद हमारा अहंकार में कोई कमी नहीं आई, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रार्थना में भक्ति में कहीं चूक है, कोई गड़बड़ी है, या हमारा जो प्रार्थना करने के पीछे जो एटीट्यूड है उसमें कोई गड़बड़ी है। तो भक्ति करने से अहंकार टूटना चाहिए, व्यक्ति ज्यादा ज्यादा हम्बल होना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमिलिटी, उसके अंदर वो जो विनम्रता ज्यादा आनी चाहिए। वैसे दुनिया में ऐसा कम दिखता है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा अहंकारी दिखते हैं, ज्यादा घमंडी दिखते हैं। ये बाबा लोग जो दूसरों को शिक्षा देते हैं कि आप सब कुछ छोड़ो, वो लंबे ऊंचे आसन के बिना नीचे बैठते ही नहीं है। कभी कभी तो कुछ बाबा लोग ऐसे होते हैं कि वो हो सकता है जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके बगल में भी नहीं बैठना पसंद करते हैं। उनसे उनका ऊंचा आसन होना जरूरी होता है, नहीं तो वो बैठना पसंद नहीं करते। हमने कहानी सुनी थी, एक संत था, फकीर था, वो रोज जाता था प्रार्थना करने के लिए। जैसे ही सुबह होता था वो मंदिर जाता था, वो अपना पूजा जो भी करने जाता था। तो उसके गांव में एक उसके पड़ोस में एक बच्चा था जो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, बड़ा आवारा किस्म का, हमेशा घूमता रहता था बाजार में, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जवान था। तो उसके माँ बाप ने जाकर के उस साधु से कहा कि आप इतने संत व्यक्ति हैं, रोज पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे रहते हैं, सुबह रोज उठ करके आप 5 बजे से पहले 5 बजे उठ के आप मंदिर चले जाते हैं पूजा करने, तो हमारे बच्चे को भी जरा साथ जोड़िए ना, इसका भी जरा कल्याण हो जाए, जरा अच्छा हो जाए। तो साधु ने कहा ठीक है, कल सुबह मैं 5 बजे निकलता हूँ, 5-5:30 बजे तो जब मैं जाऊँगा बुला कर ले जाऊँगा। तो बच्चे को आप वो रोज सुबह उठा करके ले गए साथ में। एक दिन गया, 2-3 दिन गया, एक दिन 2-3 दिन के बाद जब दोनों वापस आ रहे थे मंदिर से, तो अब सुबह का समय है, 5:30-6-7 बजे का समय है, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, गर्मी का मौसम है, कोई छत पर सोया है, कोई नीचे सोया है, कोई टहल रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई ब्रश कर रहा है। तो लड़के ने बोला साधु से कि महाराज कि देखिए लोग कितने पापी हैं, सुबह हो गया है, कोई प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, सोए पड़े हैं, कोई क्रूज कर रहा है, कोई घूम रहा है, बहुत पापी लोग। साधु ने कहा, पता नहीं ये लोग पापी है कि नहीं, पर मैंने 3 दिन से बड़ा पाप कर दिया। क्या? बोले तू कुछ भी था, आवारा था, बेरोजगार था, जो भी था, पर इतना घमंडी तो नहीं था कि दुनिया तुझे गंदा लगे और तू ही बड़ा अच्छा हो जा लगे। तो 3 दिन क्या मंदिर में जाकर माथा टेक दिया, तुझे लगता है कि ये सारी दुनिया पापी है और तू ही बेचारा धार्मिक बन गया। अगर ऐसा मन में विचार आने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी प्रार्थना पूजा करने की तरीके में, हमारे ईश्वर से जुड़ने की जो उपाय है उसमें कोई गड़बड़ी है। अगर पूजा से अहंकार बढ़ता है तो प्लीज पूजा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको घमंडी बना डालेगा। अगर आपकी भक्ति से आपका अहंकार बढ़ता है तो आप और एक जहर पाल रहे हैं। और हम दुनिया में देखते हैं लोगों, ये जो धर्म के नाम पर जो जो चिन्ह लगाने की बीमारी चली, बड़े बड़े आप बाबाओं को देखेंगे, भारत में ही देखिए, बाहर भी देखिए, आप मथुरा जाएं, काशी जाएं, बनारस जाएं, तीर्थ क्षेत्रों में जाएं, बड़े बड़े पंडे लोग कम से कम 30-40 किलो का पेट लेकर के, ऊपर लंबा चौड़ा तिलक, 50 तरह के तिलक, मोटी मोटी मालाएं डाल करके, अलग अलग रंगों के कपड़े पहन करके जैसे चलेंगे, ऐसा लगता है मानो भगवान का ठेका सारा उनके हाथ में है, क्योंकि वो पूजा करते हैं और ये सब पापी हैं, नरक जाने वाले हैं, भगवान हमारे मुक्ति में है। वो जो अहंकार झलक जाता है, ये जब हम जब नास्तिक होते होते, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, नहीं पूछते, जैसे ही पूजा करने लगते फिर जरूरी क्या हो जाता है, कुछ तिलक चंदन लगा दो, कुछ एक क्रॉस डलवा दो, ये टोपी पहना दो, एक ओम का लॉकेट डलवा दो। क्यों? पब्लिक को दिखाना जरूरी है कि मैं भक्त हूं। क्या हमारे में से कोई पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं? क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि चलो आज प्यार कर बाजार में प्यार करेंगे, छुपा कर प्यार नहीं करते, दिखा के करेंगे? चलो, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करने के लिए मार्केट जाते हैं और पब्लिक में खड़े होकर के प्यार करने लगते हैं? क्या आप अपनी पत्नी से या पति से प्यार करने के लिए आप कोई ऐसा खुला जगह देखते हैं जहां लोग इकट्ठा हो और जहां प्यार करने लगो? पर जैसे ही हम ईश्वर से प्यार करने लगते हैं, पब्लिक जरूरी है, और पब्लिक नहीं होती है तो हम फिर अपना कोई ऐसे निशान बनाते हैं जिससे कि पब्लिक को पता चले कि भाई ये भगवान को पूजता है, मानता है। प्यार बड़ा प्राइवेट चीज होता है, बड़ा व्यक्तिगत चीज होता है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप पब्लिक में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, वो अलग बात है कि, पर प्रॉब्लम है कि ज्यादातर धार्मिक चीजें बाहर होने लगती है, अंदर इंडिविजुअल कम होने लग गया है। और इसका परिणाम ये क्या है कि भक्ति को भी हम यूज करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने इंडिविजुअल गोल के लिए, कि सोसाइटी में हमें कोई रिकॉग्नाइजेशन मिले। इससे अहंकार बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। जिस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की, हम और 2-4 नई बीमारियां पाल के चल पड़े। जैसे कुछ लोग दुख भुलाने के लिए बार में चले जाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें दुख कम भूलते हैं और नए नए दुख फिर और लेकर के आ जाते हैं। तो प्रार्थना से अहंकार घटना चाहिए, पहला फल है, स्वामी जी लिखते हैं। अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ रही है, तो जो सबसे पहला जो आप में सिम्टम दिखेगा, वो मालाओं से या चंदन तिलक लगाने से या कपड़ों से नहीं, आपके व्यवहार में पोलाइटनेस दिखने लगेगा, विनम्रता दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको यह एहसास होगा कि इस इतने बड़े संसार में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कितने भी हेंकड़ी मारूं तो ईश्वर चाहे मुझे कभी भी पटखनी दे सकता है, मैं कहीं भी अपने आप को हरा हुआ महसूस कर सकता हूं। तो मेरे पास जो कुछ है, जब तक उस ईश्वर की कृपा है, नहीं तो इस दुनिया में कितने बड़े बड़े रथी महारथी, राजा महाराजा, धनी ज्ञानी लोग कहाँ बर्बाद हो गए किसी को पता नहीं चला, और कितने गरीब अनपढ़ लोग या जिनके ऊपर किसी की कृपा नहीं थी वो लोग कहाँ पहुंच गए किसी को पता नहीं चला। तो इस दुनिया में ईश्वर की कृपा से कुछ भी हो सकता है, मैं अगर घमंड से जीऊं तो कोई फायदा नहीं है। जब ये भावना क्रिएट होती है तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना आप कभी भी अपने से कमजोर व्यक्ति से नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ताकतवर हैं किसी कमजोर आदमी से आप हेल्प नहीं मांगते, अगर आप धनी हैं तो किसी गरीब से पैसा नहीं मांगते, अब अगर आप ज्ञानी हैं आपसे कम जानने वाले व्यक्ति से आप ज्ञान नहीं मांगते, आप जब भी कुछ मांगते हैं उसी व्यक्ति से मांगते हैं जो आपको पता है कि वो आपसे ज्यादा है, वो धन हो ज्ञान हो बल हो कुछ भी। ये जो रिकॉग्नाइजेशन है कि मेरे से कोई ज्यादा जानता है, ये बड़ी जरूरी चीज है। मेरे से कोई ज्यादा रखता है, ये रिकॉग्नाइजेशन करना बड़ी जरूरी चीज है खुद के लिए। फिर हमारा जो औकात है, जो हमारी जो स्थिति है, मेरा जो सामर्थ्य है, मैं उसको ठीक ठीक आंक पाऊंगा, उसका ठीक ठीक असेसमेंट कर पाऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूं। और जब हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर कितने बड़ा है, तो फिर हमें अपना जो सामर्थ्य है ये पता लगता है, तो फिर विनम्रता टूटनी चाहिए और विनम्रता आनी चाहिए और अहंकार टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब है कि हमारी भक्ति की प्रक्रिया में कहीं समस्या है। भक्ति का जो दूसरा प्रार्थना का जो दूसरा लाभ है वो है कि रिफॉर्मेशन, जीवन में बदलाव आने लगता है। हम सब ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, भगवान को, अलग अलग जगह जो जहां भी प्रार्थना करता है, कोई कहता है भगवान बुद्धि दो, कोई कहता है धन दो, कोई कहता है मुझे मुझे सामर्थ्य दो, जो जिस तरह की भी प्रार्थना करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, वो कोई मैटेरियल चीजें मांगता है या स्पिरिचुअल चीजें मांगता है वो अलग बात है। ये मांगने पर क्यों नहीं मिलता है ज्यादातर लोगों को? इसीलिए नहीं कि ईश्वर आपके प्रार्थना से खुश नहीं है या आपकी प्रार्थना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कि हम जो कुछ मांगते हैं वो सिर्फ एक ऊपरी मांगते हैं, अंदर से दिल से कोई मांगना नहीं होता है। जब हम मांगते हैं ईश्वर हमें बुद्धि दो, सचमुच बहुत कम लोग होंगे जो सचमुच ईश्वर से अपने ये फील करते होंगे मेरी बुद्धि कम है और ईश्वर सचमुच मुझे थोड़ी बुद्धि दे दो, वो तड़प नहीं होता है। जब एक रेड लाइट पर कोई आपको भीख मांगने जाता है, वो बताता है कि मैं भूखा हूँ, और यहाँ तो ये प्लाईबोर्ड लगा करके खड़े रहते हैं कि 3 दिन से भूखा हूँ, 8 दिन से वो हूँ, दो साल से नौकरी नहीं है, प्लीज। वो बोलते नहीं तो लिख करके लगा के रखते हैं, फ्लैग कार्ड पर लगा के रखते हैं। तो जब आपको कोई चीज मांगना होता है, जब आप सचमुच फील करते हैं कि वो आपकी कमी है और मांगते हैं, पर बहुत कम लोग होंगे जब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हम भजन गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, या जो बच्चों को सिखाते हैं शाम को प्रार्थना करो, या हम खुद प्रार्थना करते हैं, या मंदिर में जब हम प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत रेयर लोग होंगे जो बोलते हैं ईश्वर से मांगते हैं वो सचमुच दिल से उसको चाहते हैं। क्योंकि आप दिल से सचमुच चाहते नहीं हो तो वैसे ही आपकी चाहत है फ्री में मिल जाए मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, वो तो कोई भी बन जाएगा, कुत्ता बिल्ली भी को मौका मिले वो कहेगा मैं भी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। अगर आपको प्रेसिडेंट बनने की ख्वाब है तो वो दिल से आनी चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए, और जब अंदर से आती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके लाइफ में, आपके काम में, आपके एटीट्यूड में, मतलब आप उसी तरह के काम करते हैं, उसी तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह के माइंडसेट बनाते हैं। वो अलग बात है कि आप प्रेसिडेंट बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। आप प्रेसिडेंट नहीं बनते तो सीनेट मेंबर बन जाएंगे, नहीं होगा तो किसी स्टेट लेजिस्लेटर बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो आप अपने शहर के कुछ वो काउंसिल मेंबर बन सकते हैं। पर आप अगर घर में बैठे बैठे अपने नौकरी करते हुए मंदिर में जप करते रहेंगे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो 18 जन्म में कभी नहीं बन सकते। इसका मतलब आपको सचमुच बनने की कोई इच्छा नहीं है, बस प्रार्थना करते हैं, अगर तुक्का कहीं लग जाए कोई उठा के लेकर बैठा दे सिंहासन पर, और ऐसा दुनिया में होता नहीं है। इसीलिए ज्यादातर जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमें फल मिलता नहीं है, और जिन लोगों को गलती मिल जाता है वो इसीलिए नहीं कि उनकी प्रार्थना सुन ली ईश्वर ने, इसीलिए कि वो को इंसिडेंस होता है। को इंसिडेंस मतलब आपको मिलना था, वह आपने परिश्रम किया था, जो भी किया था आपको मिला, इसीलिए नहीं कि ईश्वर प्रसन्न हो गया और बोले जाओ बन जाओ। जिस चीज को हम मांगते हैं या जिस चीज को हम बोलते हैं, अगर वो हमारे दिल से उड़ता हो, हमारे रोए रोए में उसका आवाज आता हो, तो आप बनते हैं। जब बचपन में आपने ख्वाब देखा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सोशल सर्वेंट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, जो भी आपको बनना है, जो आपने देखा, जो ख्वाब देखा उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाई नहीं की, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काम नहीं किया, तो ख्वाब ख्वाब रह जाता है, आप और कुछ बन जाते हैं। आप वही बनते हैं जो ख्वाब देखा नहीं, जिसके लिए आपने अपने पर्सनैलिटी को तैयार किया, आपका माइंड जिस तरफ गया, आपके एक्शन जिस तरफ के गया, आपके माइंड आपके सोच जिस तरह बना, आप वही बन जाते हैं। तो सोच बड़ा मायने रखता है। आपका जो विचार है वो विचार जैसे जैसे घनीभूत होगा, जितना इंटेंसिटी में जाएगा आपका जो थॉट है, वो आपके पर्सनालिटी को इतना रिफॉर्म करता जाएगा। हम सब जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है और हम मानते हैं, पर जो व्यक्ति के अंदर जितना ये जो थॉट है, ये विचार है, जितना घना होता जाएगा वो उतना ज्यादा प्योर होता जाएगा। अगर ये घना नहीं बनाए, सिर्फ ऊपरी ऊपरी है, तो ठीक है, हम किसी के घर में ताला तोड़ के चोरी नहीं करेंगे, पर हम इनकम टैक्स में चोरी कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी में हेरफेर कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस में हेरफेरी कर सकते हैं, आप 50 तरह के हेराफेरी कर सकते हैं। क्योंकि हमें चोरी करना बुरी बात है ऐसा हमारे थॉट प्रोसेस में नहीं पहुंचा। हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी तो मानते हैं, पर दिल अभी हमारा माना नहीं है। दिल ने हमारे हमारे अंदर वो जो विचार है वो अभी इतना घनीभूत नहीं हुआ है, उतना इंटेंशली अभी वो घुसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को बदल सके, कि किसी भी हालत में मैं किसी भी तरह के अनैतिक धन उपार्जन नहीं करूंगा, इलीगल पैसा नहीं कमाऊंगा। तो विचार जब होता है, देखिए ये माइंडसेट बड़ी 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 जरूरी चीज होती है, जो थॉट प्रोसेस है बड़ा मायने रखता है। आप और मैं जैसा भी हैं, जिस तरह के भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आधा अधूरा हैं, जैसा भी हैं, वो इसीलिए वैसे ही हैं जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, जैसा हमारा माइंडसेट है, जिस जैसे हम मानते हैं हमारे दिल से, हम वैसे ही हमारे शरीर से झलकता है वो चीज। अगर आप मानते हैं कि चोरी करना बुरी चीज है, अगर ये माइंडसेट आपका बन चुका है, अगर ये स्टेट ऑफ माइंड आपका हो चुका है, तो आप भूखा मर जाएंगे तो भी किसी का सामान नहीं उठाएंगे, और आपको करोड़ों एग्जांपल्स मिलेगा सारे दुनिया में, गरीब लोग, मजदूर लोग, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ऐसे कितने एग्जांपल्स अखबारों में, मीडिया में आता है कि जिनको ऐसे किसी का खोया हुआ बैग मिलता है, पर्स मिलता है, वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं, वो देखते नहीं उसके अंदर क्या है, पता लगता है उसमें लाखों करोड़ों की चीजें होती हैं। पर अगर माइंडसेट आपका ऐसा नहीं है, तो आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो भी गड़बड़ करते हैं, और आप देखते हैं अमेरिका में ज्यादातर जो पकड़े जाते हैं वो बड़े लोग होते हैं। क्यों? जैसा हमारा माइंडसेट होता है, हम उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी होती है। प्रार्थना क्या है? मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या मुझे चाहिए, इसके लिए तड़प। अगर आपके तड़प नहीं है कुछ चीजें पाने के लिए, तो ईश्वर भला क्यों उस नालायक जो प्रोफेसर आपका कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा, अगर आप सीरियस नहीं है, क्लास में रेगुलर नहीं है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रोफेसर में आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्लासरूम में। ऑफिस में जो बॉस है, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं है, ऑफिस के लिए डेडिकेशन नहीं, काम के लिए डेडिकेशन नहीं, तो आपको ज्यादा काम देगा नहीं, वैसे काम चलाओ काम देगा, जिंदगी भर वो उसी ऑफिस में उसी टेबल पर बैठे रहेंगे, अब कुछ दिनों के बाद कहेगा नहीं अब आप जरूरत नहीं है। तो जब हम ही किसी को तैयार नहीं है रखने के लिए, जिसके अंदर वो भाव नहीं है पाने का, तो ईश्वर क्यों देगा भला? तो प्रार्थना का मतलब होता है जो सचमुच हम प्रार्थना करते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं, नौटंकी करने के लिए नहीं करते, दिल से करते, तो सचमुच वो हमारे जीवन को बदल डालता है। जिसको बुद्धि चाहिए वो सिर्फ गायत्री मंत्र बोलने से नहीं, अगर जेन्युइन उसको बुद्धि चाहिए और उसके लिए वो तड़पता है तो बुद्धि मिलेगी। गायत्री, एक बार गायत्री मंत्र बोलते ही बुद्धि आएगी, क्योंकि आपको तड़प है, आपको बनना है। बाकी जिंदगी भर बोलते रहिए, आपको तो चाहिए नहीं तो क्यों मिलेगा। तो तड़प बड़ी जरूरी चीज है। वो जो विचार का घनत्व है, जो इंटेंसिटी ऑफ थॉट है, वो पर्सनैलिटी को चेंज करता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रार्थना से जीवन में रूपांतर होता है, व्यक्ति बदल जाता है। जो अगली चीज है प्रार्थना का फल, अगली स्लाइड में चलेंगे। प्रार्थना एक तरह की घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है। किस चीज की? अपनी हेल्पलेसनेस, अपनी इनेबिलिटी की, कि मैं समर्थ नहीं हूं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर जब हम सामाजिक क्षेत्रों में जाते हैं, हमें यह प्रूव करना होता है कि आई एम एबल टू डू इट, एबिलिटी को प्रूव करना होता है। प्रार्थना ऐसी है कि जो ये प्रूव करने के लिए है कि मेरे में वो एबिलिटी नहीं है। अपनी अपात्रता की घोषणा ही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब मांगना ही तो हुआ ना। जब आप मांगने जाते हैं, पैसा मांगते हैं, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप उससे कम हो। जब आप किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास उस मामले में ज्ञान नहीं है। ये अपनी जो इनेबिलिटी है, जो असमर्थता है, उसकी स्वीकृति, उसकी एक्सेप्टेंस है। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी अपात्रता की, असमर्थता की घोषणा होती है। बोले इससे क्या लाभ है? इससे लाभ यह है कि व्यक्ति दोबारा फिर विनम्र बनता है। जब आप सरेंडर करते हैं अपने आप को पूरी तरह, कि आपके मैं जो कुछ भी आपके कारण हूं, ये जो सरेंडरनेस, ये जो समर्पण है, यही हमारी योग्यता बनती है। हमारे भक्ति पर, प्रार्थना करने पर अगर ईश्वर फल नहीं देता, वो इसीलिए नहीं देता क्योंकि हो सकता है हमारी योग्यता नहीं है उस फल को पाने के लिए। भारत में बहुत सारे जो खास करके डॉक्टर लोगों का तो प्राइवेट में भी कर देते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह बहुत खुल गया, और आपको पता है भारत में इतने स्कोप नहीं है, तो वो प्राइवेट कॉलेज वगैरह में डोनेशन, वैसे उनकी इतनी योग्यता भी नहीं है कि इंजीनियरिंग पढ़े, पर क्या है कि पैसे वाले माँ बाप पे 10-20 लाख डोनेशन दे देते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। कॉलेज के नाम पर 10 कमरे होते नहीं है, तो आप उनको डिग्री मिल जाती है, फिर नौकरी ढूंढने चलते हैं। और वो चाहते हैं कि वैसे ही तनख्वाह मिले जैसा किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले व्यक्ति को मिले। तो मुश्किल से 5-10 हजार रुपये में आपको इंजीनियर कर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? अब एक सर्वे आया कि भारत में जो कंपनीज है या जो गवर्नमेंट सर्विस में भी 40% जो सीट्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो खाली हैं। और भारत में पढ़े लिखे लोगों में से 70% लोग बेरोजगार हैं, या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, या ऐसी नौकरी करते हैं जो उनके पढ़ाई डिग्री के हिसाब से बड़ा नीचा है। अब ये कितना इम्बैलेंस स्टेटमेंट देखिए। 40% पोस्ट खाली पड़े हैं, पर 70% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। 40% भर क्यों नहीं जाते हैं? तो सर्वे में पता चला कि जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड है, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो पोस्ट में वो काम कर सके। जो रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को, एक ऑफिस वाले को, सरकारी दफ्तर को, कि हमें इस तरह का एक व्यक्ति चाहिए इस काम को करने के लिए, उस तरह का कोई ट्रेंड व्यक्ति हमें नहीं मिलता, उस तरह का कोई नॉलेज, उस तरह के स्किल रखने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। बात समझ में आती है? नौकरी देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लाखों डॉलर रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं, डॉलर देने के लिए तैयार बैठे हैं, और लाखों लोग लाखों डॉलर लेने के लिए भी तैयार बैठे, पर ना उनको मिलता है ना वो देने को तैयार है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है कि योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है। जिस दिन आप योग्य बन जाते हैं, आपके अंदर वो स्किल आ जाता है, आपके अंदर वो जो रिक्वायरमेंट है जिस स्किल की वो आ जाता है, तो फिर आप उस दिन उतने जितनी रुपए की आप कामना करते हैं उतना आपको मिलने लगता है, कंपनी हायर करता है। अध्यात्म क्षेत्र में भी वही रास्ता है। करोड़ों करोड़ों लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में प्रार्थना करते, घरों में ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर लोग धर्म से जुड़ने वाले दुखी भी मिलेंगे। जो धर्म को नहीं मानता वो जितना दुखी है, करने वाला भी उतना ही दुखी मिलेगा। वो जितना खराब है वो भी उतने ही खराब मिलेंगे। वो जितना कॉम्प्लिकेटेड है ये भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। वो जितना प्योर है वो भी इतने प्योर मिलेंगे। तो फर्क कहाँ रह गया? क्यों नहीं कुछ डेवलपमेंट हुआ? क्यों नहीं कुछ अच्छा हो पा रहा है? जो ईश्वर को मानता है, जो भगवान से भक्ति करता है, वो उस व्यक्ति से बेहतर क्यों नहीं बन पाता? उसको बेहतर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता जो ईश्वर भगवान से भक्ति नहीं करता? क्योंकि उसकी भक्ति जो है वो डोनेशन दे करके इंजीनियरिंग डिग्री लेनी जैसी है। मतलब जो डिग्री तो है पर अंदर खोखला है, कुछ नहीं आता है। 5 कमरे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर के आया है डोनेशन देकर। हमारी भक्ति इस तरह की, इसी को हम कहते हैं हिपोक्रेसी। मतलब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते, आप पब्लिक से कुछ रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, या आपकी कुछ अपनी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि अगर मैं अभी से पटा के रखूं, जैसे हम कभी भारत में इंजीनियर वो पटाके रखते हैं एमएलए वगैरह को, तो लास्ट टाइम में काम आ जाए। तो आपको पता है दिवाली के समय दिल्ली में इतनी जाम होती है 1 महीने तक कि आप 10 मिनट के रास्ते 3 घंटे में पहुंचेंगे। और ज़्यादातर क्यों जाम होता है ये ज्यादा, वो तो दिवाली में गिफ्ट देने की परंपरा है, सो लोग जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। पर आप जो जो भारत से अभी अभी जुड़े हैं उनको पता भी होगा, या बहुत सारे लोगों को पता ना भी हो, 90% जो गिफ्ट दिए जाते हैं दिवाली के समय दिए जाते हैं, वो किसी रिलेटिव को या फ्रेंड्स को नहीं दिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं कि कौन से ऑफिस में कौन सा व्यक्ति बैठा है जो अगले साल भर में कभी काम आएगा। वो नेता हो, इंजीनियर्स हो, कंठे, वो जो 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 भी जहाँ जिसका काम बनना है वहाँ गिफ्ट जाता है। ये दिवाली की गिफ्ट बांटते और हर कंपनी का अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रहता है दिवाली गिफ्ट में, देते रहो काम आएगा कभी। तो हम जब इसी तरह ईश्वर से भी डील करने लगते हैं, ईश्वर तो कोई ऑफिसर नेता नहीं है कि उसके घर में कमी पड़ गई, उसकी बीवी को सोने की हार की जरूरत है तो आपने दे दिया, आपका काम बना देगा। उसकी बीवी तो लक्ष्मी वैसे ही आपको देने वाली, उसको क्या जरूरत है धन संपत्ति की? अब लड्डू खिलाओ ना खिलाओ वैसे ही उसके घर में लड्डू खाना बहुत मिल जाएगा। पर हम अपनी इसी गलतफहमी में रहते हैं कि साल भर पटाते रहो तो काम बनेगा, और ईश्वर के दरबार में कम काम बनता नहीं है क्योंकि हमारे सोच में गड़बड़ी है। जिस दिन आप सरेंडर कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, तू ही है, ये जो सरेंडरनेस है, जो समर्पण है, ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ आवर इनएबिलिटी है, यही हमारी एबिलिटी है ईश्वर को पाने के लिए। ये जो विनम्रता, ये जो अहंकार का नाश, ये जो हमारा घमंड है, ये इसका जो कम होना, यही हमें योग्य बनाता है ईश्वर का प्यारा बनने के लिए। और जिस दिन हमारी प्रार्थना सचमुच काम करती है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे अंदर वो विनम्रता, हमारे अंदर वो निरहंकारता, निराभिमानिता लाती है, उस दिन हम योग्य बन जाते हैं ईश्वर की कृपा पाने के लिए। पर तब भी ध्यान रखिए, ईश्वर तब भी आप पर कोई एक्स्ट्रा कृपा नहीं करता, ना कर ही सकता। अगर करने लगे फिर तो वो बेईमान हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तो हमेशा बोला करते थे कि भाई देखो अमृत बरस रहा है, चारों तरफ अमृत बरस रहा है, बटोरने वाले बटोर लो। तो उनका एक परम शिष्य था आनंद। जब कोई परम हो जाता है ना, फिर उसको खुला छूट मिल जाता है, वो कैसे भी बातचीत करे। थोड़ा जो रिश्ता गहरी हो जाती है, प्यार जो बहुत हो जाता है, फिर वो जो आपका जो फॉर्मेलिटीज नहीं रहता है कि आप बाल के बात करें, तो वो तूता पर भी आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गहरी रिलेशनशिप में फिर फॉर्मेलिटी कम होती है। तो आनंद उनका बड़ा परम शिष्य था। एक दिन उनको पूछा अकेले में कि भंते, ये जो आप हमेशा बोलते रहते हो कि अमृत बरस रहा है या बरत रहा है, लौट लो, बाकियों को तो छोड़ो, मैं आपके साल से इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कभी अमृत मिला ही नहीं, आप पब्लिक को क्यों बोलते रहते हो अमृत बरस रहा है, पकड़ लो पकड़ लो। तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले देखो आनंद, तुम्हें नहीं मिल रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि अमृत नहीं बरस रहा। तुम्हारे पास घड़ा नहीं होगा, तुम्हारे पास पात्र नहीं होगा, तुम पाने लायक नहीं होगे, तभी तुम्हें नहीं मिल रहा है। देखो ह्यूस्टन शहर में 4 दिन से बारिश हो रही है और आपके बैकयार्ड में, आपके घर के पिछवाड़े में एक घड़ा रखा हुआ था, वो अभी तक भरा नहीं है। क्योंकि आपका घड़ा भरा नहीं है और अब चिल्लाकर बोले कि नहीं बारिश नहीं हो रही है, ये गलत बात है। आपका घड़ा नहीं भर रहा है क्यों? हो सकता है कि आपके घड़े में कोई छेद हो सकता है आपका घड़ा उल्टा रखा हुआ हो सकता है घड़े में पहले से ही सामान भरा पड़ा हो कि पानी जाने को जगह ना हो। तो कितनी भी बारिश होते रहे, घड़े में पानी नहीं रखेगा। अगर घड़े में ही पानी भरना है तो एक अच्छा सा घड़ा लाओ जिसके कोई छेद ना हो, अंदर खाली हो, ऊपर की ओर मुंह हो, तो 5 मिनट में घड़ा भर जाएगा। फिर आप चिल्लाने लगेंगे देखो बारिश हो गई, बारिश हो गई। गलत है, बारिश अभी नहीं हुई, बारिश तो 4 दिन से हो रही थी। तुम आज बारिश के पानी पाने लायक बना। ये जो पात्र शब्द है ना हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी, पात्रता। ये पात्र का मतलब होता है बर्तन, सामान बर्तन में रखा जाए। जब कहते हैं ना इस नौकरी के लिए पात्र नहीं है, इस सम्मान के लिए वो पात्र नहीं है, इज नॉट एबल, वो एबिलिटी को पात्रता कहते। पर पात्र का रियल मीनिंग होता है बर्तन, सामान किसी बर्तन में रहता है। आप किसी को सम्मान देना चाहते, वो सम्मान को रखने लायक वो है नहीं है। आप किसी को कोई नौकरी देना चाहते, वो नौकरी को वो हैंडल करने लायक, होल्ड करने लायक वो नहीं है। यही है पात्रता, एबिलिटी। प्रार्थना हमारे घड़े को, प्रार्थना से हम घड़े बन जाते हैं, प्योर साबुत खाली घड़ा जिसमें कुछ भी नहीं है। और जिस दिन हम साबुत घड़ा और अच्छा घड़ा बन जाते हैं, उस दिन हमारे अंदर वो कृपा बरसने लगती है और हम चिल्लाने लगते हैं कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, तब भी गलत स्टेटमेंट है। ईश्वर ने आप पर अलग से जिस दिन कृपा करने लगी, उससे बेईमान ईश्वर कोई हो ही नहीं सकता, फिर तो सारा नेचर का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ईश्वर ने आप पर एक्स्ट्रा कृपा कुछ भी नहीं की आपकी प्रार्थना से, इतना हुआ कि प्रार्थना से आज आप ईश्वर की कृपा पाने लायक बने, तो कृपा आपको मिलने लगी, कृपा आप पर बरसने लगी। तो ये कहना अच्छा है कि ईश्वर ने कृपा की मेरे ऊपर, इससे आपकी हम्बलनेस बना रहता है। पर फैक्चुअली इसे इनकरेक्ट कि ईश्वर आप पर विशेष कृपा नहीं कर सकता। इस संसार पर अनंत कालों तक ईश्वर हमेशा कृपा करता है, सब पर बराबर कृपा करता है, किसी पर अधिक नहीं, किसी पर कम नहीं। ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है। हमें अगर नहीं मिलता है, हमारी अयोग्यता के कारण है। प्रार्थना उस अयोग्यता को दूर करती है और हमें उसके लायक बनाता है कि हम उसकी कृपा को पा सके। स्वामी जी लिखते हैं कि प्रार्थना का चौथा फल जो है वो है आत्मा में आर्द्रता। इसी बात को कह के आगे विराम करेंगे। आत्मा में आर्द्रता का मतलब है जेंटलनेस और सॉफ्टनेस इन योर हार्ट। जब आप जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी ईश्वर के प्रति वो जो पुकार बढ़ेगा, प्रार्थना बढ़ेगी, आपका दिल, हमारा दिल उतना ज्यादा सॉफ्ट होने लगेगा, उतना कोमल होने लगेगा, कोमल होने का मतलब क्या है? कोमल होने का मतलब नहीं कि आपको कोई छू दे तो आप कहेंगे हा 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 दर्द हो। कोमल होने का मतलब होगा, आपका दिल कमल होने का मतलब होगा कि दूसरे को जब छू ले तो आपको लगे कि नहीं आ हा कहीं उसको तो दर्द नहीं हो रहा है। जब आप शरीर से कोमल होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप दिल से कोमल हो। शरीर से कोमल होने पर कोई आपको छू ले तो आप आ हा हा करने लगेंगे। अब दुनिया में ये जो आजकल जो फेमिनिज्म का मूवमेंट चल रहा है, जो महिला आंदोलन चल रहा है, शुरू शुरू में एक स्टेटमेंट आया, बाद में अब धीरे धीरे वो समझ गए कि नहीं ये थोड़ा फैक्चुअली रॉन्ग है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना, उस पर बहुत सारे आए तर्क। एक तर्क था जो अब आप धीरे धीरे कम हो गया है कि महिलाएं करप्ट नहीं हो सकती है, महिलाएं क्रूएल नहीं हो सकती है, इसीलिए इनको टीचर ज्यादा बनाया जाए, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। पर जैसे जैसे उनकी सरकार में भागीदारी बढ़ी, पुलिस में, आर्मी में, सरकार में, पता चला एक पुरुष जितना बेईमान हो सकता है स्त्री उतनी बेईमान हो मिलती है, वो जितना क्रूर हो सकता है पुरुष स्त्रियां भी उतनी ही क्रूर मिल जाती है, बिल्कुल बराबर समान अधिकार। तो फिर वो स्टेटमेंट धीरे धीरे महिला आंदोलनकारियों ने वापस लिया कि हम बराबर हैं, हम ऊपर नहीं है इस मामले में। शरीर से कोमल होने से आप कोमल नहीं हो सकते, आप अपने लिए तो कोमल होंगे, दूसरों के प्रति कोमल नहीं। हृदय कोमल होना जरूरी है। भक्ति व्यक्ति के हृदय को कोमल बनाता है कि जब आप दूसरों से पेश आने लगते हैं तो आपका व्यवहार उसको चोट ना लगे, पत्थर को भी छुए तो भी आपको लगे कहीं उसको दर्द तो नहीं, जो भक्त होता है। ध्रुव और प्रहलाद की कहानी तो यही है। ध्रुव जंगल में घूमता है, जब उसके बाप और उसकी माँ उसको घर से भगा देते हैं, उसकी सौतेली माँ वगैरह, और वो ईश्वर के लिए 100% समर्पित है, उसको और कुछ नहीं देखता ईश्वर के अलावा। वो सांप दिखे, बिच्छू दिखे, हाथी दिखे, चीता दिखे, पेड़ दिखे, पौधा दिखे, उसमें सब जगह वो ईश्वर की सत्ता दिखती है। वो बड़े हंसते हंसते गले लग जाते। इसी को ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद में कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब व्यक्ति सब में अपने को देखने लगे, अपने को सब में देखने लगे, फिर किससे नफरत करेगा? भक्ति व्यक्ति को उस लायक बनाता है, उसके दिल को इतना कोमल बना देती है कि व्यक्ति दूसरों से वैसे ही पेश आता है जितना खुद से पेश आता है। अगर मुझे मारने पर दर्द होता है तो दूसरों को मारने पर भी दर्द होता होगा। अगर मुझे काटने पर, खून निकलने पर मुझे दर्द होता है, किसी की प्राणी को काटने पर भी उसको भी दर्द होता होगा। कोई मुझे अगर गाली देता है तो मुझे दर्द होता है, किसी को भी मैं गाली दूं उसको भी दर्द होगा। अगर कोई मुझे ठगता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं किसी को ठगूं उसका भी बुरा लगेगा। ये जो सोच है मेरे जैसा संसार है, संसार जैसा मैं हूँ, ये हृदय की कोमलता है। और ईश्वर की भक्ति जैसी जैसी बढ़ेगी, हृदय की कोमलता बढ़ेगी, सारे संसार में हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे और दूसरों को भी अपने अंदर देख पाएंगे। यही यजुर्वेद का भाष्य। तो प्रार्थना से ये चार पांच फलों की हमने चर्चाएं की, आज थोड़ा समय कम था। हम अगले बार फिर उपासना की, जो भक्ति का जो तीसरा और अंतिम खंभा है, जो पिलर है उपासना, उसकी चर्चा करेंगे और उसी के साथ उसको कंक्लूड करेंगे। जनवरी में हम ईशावास्य उपनिषद शुरू कर रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद के एक एक मंत्र के लेकर व्याख्या करेंगे, तो आप लोग जरूर सुनने आए। तो इसी के साथ यही विराम देते हैं।